आंधी का पहला वेग जब शांत हो जाता है तब वायु के प्रचंड झोंके, बिजली की चमक और कड़क भी बंद हो जाती है और मूसलाधार वर्षा होने लगती है। गायत्री के चित्त की शांति भी द्रवीभूत हो गई थी। हृदय में रुधिर की जगह आंसुओं का संचार हो रहा था। आधी रात बीत गई पर उसके आंसू न थमे। उसका आत्मगौरव आज नष्ट हो गया। खतीब योग के बाद उसकी सुदृढ़ स्मृति गायत्री के जीवन सुख की नींव थी। वही साधु कल्पना उसकी उपास्य थी। वह इस हृदय कोष को जहाँ यह अमूल्य रत्न संचित था कुटिल आकांक्षाओं की दृष्टि से बचाती रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि वह वस्त्राभूषणों से प्रेम रखती थी, उत्तम भोजन करती थी और सदैव प्रसन्नचित रहती थी। किंतु इसका कारण उसकी विलासप्रियता नहीं वरन उसके अपने सतीत्व का अभिमान था। उसे संयम और आचार का स्वांग भरने से घृणा थी। वह थिएटर भी देखती थी, आनंद उत्सव में भी शरीक होती थी। आवरण सुरुचि और मनोरंजन की सामग्रियों का त्याग करने की वह आवश्यकता न समझती थी, क्योंकि उसे अपनी चित्त स्थिति पर विश्वास था। वह एकाग्र होकर अपने इलाके का प्रबंध करती थी। जब उसके आंसू थमे तो वह इस दुर्घटना के कारण और उत्पत्ति का विचार करने लगी और शनः-शनः उसे विदित होने लगा कि इस विषय में मैं सर्वथा निरापराध नहीं हूँ। ज्ञान शंकर कदापि यह दुस्साहस न कर सकते यदि उन्हें मेरी दुर्बलता पर विश्वास न होता। उन्हें यह विश्वास क्यों कर हुआ? मैं इन दिनों उनसे बहुत स्नेह करने लगी थी, यह अनुचित था। कदाचित इसी संपर्क ने उनके मन में यह भ्रम अंकुरित किया। तब उसे वह बातें याद आई जो उन संगतों में हुआ करती थी। उनका झुकाव उन्हीं विषयों की ओर था जिन्हें एकांत और संकोच की जरूरत है। उस समय वह बातें सर्वथा दोष रहित जान पड़ती थी, पर जब उनके विचार से ही गायत्री को लज्जा आती थी। उसे अब ज्ञात होता कि मैं अज्ञान दशा में धीरे धीरे ढाल की ओर चली जाती थी और अगर यह गहरी खाई सहसा ना पड़ती तो मुझे अपने पतन का अनुभव ही न होता। उसे आज मालूम हुआ कि मेरा पति प्रेम बंधन जर्जर हो गया, नहीं तो मैं इन वार्ताओं के आकर्षण से सुरक्षित रहती। वह अधीर होकर उठी और अपने पति के चित्र के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। इस चित्र को सदैव अपने कमरे में लटकाए रहती थी। उसने ग्लानियम नेत्रों से चित्र को देखा और तब कांपते हुए हाथों से उतार कर उसे छाती से लगाए देर तक खड़ी रोती रही। इस आत्मिक आलिंगन से उसे एक विचित्र संतोष प्राप्त हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो कोई तड़पते हुए हृदय पर मरहम रख रहा है और कितने कोमल हाथों से। वह इस चित्र को अलग न कर सकी, उसे छाती से लगाए हुए बिछावन पर लेट गई। उसका हृदय इस समय पति प्रेम से आलोकित हो रहा था। वह एक समाधि की अवस्था में थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि पति देव यहाँ अदृश्य है तथापि उनकी आत्मा अवश्य यहाँ भ्रमण कर रही है। शनय शनय उसकी कल्पनाएं सचित्र हो गई। वह भूल गई कि मेरे स्वामी को मरे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। वह कुलाकर उठ बैठी। उसे ऐसा जान पड़ा कि उनके वक्ष से रक्त स्रावित हो रहा है और वह कह रहे हैं, यह तुम्हारी कुटिलता का घाव है, तुम्हारी पवित्रता और सतर्कता मेरे लिए रक्षास्त्र थी। वह ढाल आज टूट गई और बेवफाई की कटार हृदय में चुभ गई। मुझे तुम्हारे सतीत्व पर अभिमान था, वह अभिमान आज चूर चूर हो गया। शोक, मेरी हत्या उन्हीं के हाथों से हुई जो कभी मेरे गले में पड़ती थी। आज तुमसे नाता टूटता है, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पति था। गायत्री स्वप्न दशा से उसी कल्पित व्यक्ति के सम्मुख हाथ फैलाए हुए विनय कर रही थी। शंका से उसके हाथ पांव फूल गए और वह चीख मारकर भूमि पर गिर पड़ी। वह कई मिनट तक बेसुध पड़ी रही। जब होश आया तो देखा कि विद्या, लौंडियां, महरियां सब जमा है और डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी दौड़ाया जा रहा है। उसे आंखें खोलते देखकर विद्या झटपट उसके गले से लिपट गई और बोली, बहन तुम्हें क्या हो गया था? और तो कभी ऐसा न होता था। गायत्री, कुछ नहीं, एक बुरा स्वप्न देख रही थी। लाओ थोड़ा सा पानी पीऊंगी, गला सूख रहा है। विद्या, थिएटर में कोई भयावह दृश्य देखा होगा? गायत्री, नहीं, मैं भी तुम्हारे आने को थोड़ी देर पीछे ही चली आई थी। जी नहीं लगा, अभी थोड़ी देर ही रात गई है क्या? बाबूजी द्रुपद अलाप रहे हैं। विद्या, 12 तो कब के बच चुके, पर उन्हें किसी के मरने जीने की क्या चिंता, उन्हें तो अपने राग रंग से मतलब है। मरे ने जाकर तुम्हारा हाल कहा तो एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ दौड़ा दिया और फिर गाने लगे। गायत्री, यह तो उनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात थोड़े ही है। रमन बाबू का यहाँ बुरा हाल हो रहा था और वह डिनर में गए हुए थे। जब दूसरे दिन मैंने बातों बातों में इसकी चर्चा की तो वे बोले, मैं वचन दे चुका था और जाना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने व्यक्तिगत विषयों को सार्वजनिक जीवन से बिल्कुल पृथक रखना चाहता हूँ। विद्या, उस साल जब अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला तब हम लोग इलाके पर गए, तुम गोरखपुर थी। उन दिनों बाबूजी की निर्दयता देखकर मेरे रोएं खड़े हो जाते थे। आसामियों से रुपये वसूल न होते तो वह चिढ़कर आसामियों पर गुस्सा उतारते। सौ सौ मनुष्यों को एक पंक्ति में खड़ा करके हंटर से मारने लगते। बेचारे तड़प तड़प कर रह जाते, पर उन्हें तनिक भी दया ना आती थी। ऐसी मारपीट ने उन्हें निर्दय बना दिया था। जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भैया के अकाल मृत्यु इन्हीं दोनों की हाय का फल है। गायत्री, तुम बाबूजी पर अन्याय करती हो। उनका कोई कसूर नहीं, आखिर रुपए कैसे वसूल होते। निर्दयता अच्छी बात नहीं, किंतु जब इसके बिना काम नहीं चले तो क्या किया जाए। तुम्हारा जीजा जी कैसे सज्जन थे, द्वार पर से किसी भिक्षुक को निराश न लौटने देते, सत्कार्यों में हजार रुपए खर्च कर डालते थे। कोई ऐसा दिन न हो जाता कि 150 साधुओं को भोजन न कराते हों। हजारों रुपए तो चंदे में दे डालते थे, लेकिन उन्हें भी आसामियों पर सख्ती करनी पड़ती थी। मैंने स्वयं उन्हें आसामियों की मुश्किल कस से पिटवाते देखा है। जब कोई और उपाय न सूझता तो उनके घरों में आग लगवा देते, और अब मुझे भी वही करना पड़ता है। उस समय मैं समझती थी कि यह व्यर्थ इतना जुल्म करते हैं। उन्हें समझाया करती थी, पर जब अपने हाथ माथे पड़ गई तो अनुभव हुआ कि यह नीच बिना मारे खाए रुपए नहीं देते। घर में रुपए रखे रहते हैं, पर जब तक दो चार लात घूसे न खा लें या गालियां न सुन लें, देने का नाम नहीं लेते। यह उनकी आदत है। विद्या, मैं यह न मानूंगी किसी को मार खाने की आदत नहीं हुआ करती। गायत्री, लेकिन किसी को मारने की भी आदत नहीं होती। यह संबंध ही ऐसा है कि एक ओर तो प्रजा में भय, अविश्वास और आत्महीनता के भावों को पुष्ट करता है, और दूसरी ओर जमींदारों को अभिमान, निर्दय और निरंकुश बना देता है। विद्या ने इसका कुछ न जवाब दिया। दोनों बहनें एक ही पलंग पर लेटी। गायत्री के मन में कई बार इच्छा हुई कि आज की घटना को विद्या से बयान कर दूं। उसके हृदय पर एक बोझ सा रखा हुआ था, उसे वह हल्का करना चाहती थी। ज्ञानशंकर को विद्या की दृष्टि में गिराना भी अभिष्ट था। यद्यपि उसका स्वयं अपमान होता था, लेकिन ज्ञानशंकर को लज्जित और निंदित करने के लिए वह इतना मूल्य देने पर तैयार थी। किंतु बात मुंह तक आकर लौट गई। थोड़ी देर तक दोनों चुप पड़ी रहे। विद्या की आंखें तो नींद से झपकी जाती और गायत्री को कोई बात न सूझती थी। अकस्मात उसे एक विचार सूझ पड़ा। उसने विद्या को हिलाकर कहा, क्या सोने लगी? मेरा जी चाहता है कि कल परसों तक यहाँ से चली जाऊँ। विद्या ने कहा, इतनी जल्द? भला जब तक मैं रहूँ तब तक तो रहो। गायत्री, नहीं, अब यहाँ जी ही नहीं लगता, वहाँ का काम काज भी तो देखना है। विद्या, लेकिन अभी तक तो तुमने बाबूजी से इसकी चर्चा भी नहीं की। गायत्री, उनसे क्या कहना है, जाऊँ चाहे रहूँ दोनों एक ही हैं। विद्या, तो मैं भी न रहूँगी, तुम्हारे साथ ही चली जाऊँगी। गायत्री, तुम कहाँ जाओगे? यह अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ की रानी हो। ज्ञान बाबू से कहो इलाके का प्रबंध करें, दोनों प्राणी यहीं सुखपूर्वक रहो। विद्या, समझा तो मैंने भी यही था, लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और ही है, जान पड़ती है। कई दिन से बार बार देख रही हूँ कि पंडित परमानंद नित्य आते हैं, चिंताराम भी आते जाते हैं। ये लोग कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम्हारे चले जाने से इन्हें और भी अवसर मिल जाएगा। गायत्री, तो क्या बाबूजी को फिर विवाह करने की सूझी है क्या? विद्या, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। गायत्री, अगर ये विचार उनके मन में आया तो वह किसी के रोके न रुकेंगे। मेरे लिहाज से वे करते हैं, इस विषय में वह शायद ही मेरी राय ले। उन्हें मालूम है कि मैं क्या राय दूंगी। विद्या, तुम रहती तो उन्हें कुछ न कुछ संकोच अवश्य होता। गायत्री, मुझे इसकी आशा नहीं। वह रहूंगी तो कम से कम वहाँ की देख रेख तो करती रहूंगी। दो तीन महीने हो गए, लोगों ने जाने क्या क्या उपद्रव खड़ा किए होंगे। एक दर्जन नातेदार द्वार पर डटे पड़े रहते हैं। एक महाशय नाते में मेरे मामू होते हैं, वे सुबह से शाम तक मछलियों का शिकार किया करते हैं। दूसरे महाशय मेरी फूफी के सुपुत्र हैं, वे मेरे ससुर के समय से ही वहाँ रहते हैं। उनका काम मोहल्ले भर की स्त्रियों को घूरना और उनसे दिल लगी करना है। एक तीसरे महाशय मेरे ननद के छोटे देवर हैं, वह रिश्वत के बाजार के दलाल हैं। इस काम से जो समय बचता है वह भंग पीने पिलाने में लगाते हैं। इन लोगों में बड़ा भारी गुण यह है कि संतोषी है, आनंद से भोजन वस्त्र मिल जाए इसके सिवा उन्हें कोई चिंता नहीं। हाँ, जमींदारी का घमंड सबको है, सभी आसामियों पर रोब जमाना चाहते हैं, उनका गला दबाने के लिए वह तत्पर रहते हैं। बेचारे किसानों को जो अपने परिश्रम की रोटियां खाते हैं, इन निठल्लों का अत्याचार केवल इसलिए सहना पड़ता है कि वह मेरे दूर के नातेदार हैं। मुफ्तखोरी ने उन्हें इतना आत्माशून्य बना दिया है कि चाहे जितनी रुखाई से पेश आओ टलने का नाम न लेंगे। अधिक नहीं तो 10 परिवार ऐसे होंगे जो मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने में जीवन के दिन काट रहे हैं। उनका बस चले तो मुझे भेज देते। किसी के यहाँ से कोई सौगात आए मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती। उनका काम बस यही है कि बैठे बैठे उत्पात किया करें, मेरे काम में विघ्न डाला करें। कोई आसामियों को फोड़ता है, कोई मेरे नौकरों को तोड़ता है, कोई मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी। कई महाशय विरासत की आशा में डेवड़े धूने पर ऋण लेकर पेट पालते हैं, कुछ नहीं बन पड़ता तो उपवास करते हैं, किंतु विरासत का अभिमान जीविका के कोई आयोजन नहीं करने देता। इन लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अभी मुझे जाने दो, बाबूजी भी जल्द ही पहाड़ पर चले जाएंगे। यदि ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी तो मुझे पत्र लिखना, चली आऊंगी। 2 दिन गायत्री ने किसी प्रकार काटे। ज्ञान शंकर से फिर बातचीत की नौबत नहीं आई। 3रे दिन वह विदा हुई। राय साहब स्टेशन तक उसे पहुंचाने गए। ज्ञान शंकर भी साथ थे। गायत्री गाड़ी में बैठी। राय साहब खिड़की पर झुके हुए आम और खरबूजे, लीचियां और अंगूर से लेकर गाड़ी में भरते जाते थे। गायत्री बार बार कहती थी कि इतने फल क्या होंगे, कौन कौन सी बड़ी यात्रा है, किंतु राय साहब एक न सुनते थे। यह भी रियासत की एक आन थी। ज्ञान शंकर एक बेंच पर उदास बैठे हुए थे। गायत्री को उन पर दया आ गई। वियोग के समय हम सहृदय हो जाते हैं। चलते चलते हम किसी पर अपना ऋण चाहे छोड़ जाएं, किंतु ऋण लेकर जाना नहीं चाहते। जब गाड़ी ने सीटी दी तो ज्ञान शंकर चौक कर बेंच पर से उठे और गायत्री के सम्मुख आकर उसे लज्जित और प्रार्थी नेत्रों से देखा। उनमें आंसू भरे हुए थे। पश्चाताप की सजीव मूर्ति थी। गायत्री भी खिड़की पर आई, कुछ कहना चाहती थी, पर गाड़ी चलने लगी। ज्ञान शंकर की विनय मूर्ति रास्ते पर उसकी आंखों के सामने फिरती रही। गायत्री की जाने के बाद ज्ञान शंकर को भी वाराना दूभर हो गया। सौभाग्य उन्हें हवा के घोड़े पर बिठाए वृद्धि और सिद्धि के स्वर्ग में लिया जाता था, किंतु एक ही ठोकर में वह चमकते हुए नक्षत्र अदृश्य हो गए। वह प्राण पोषक शीतल वायु, वह विस्तृत नवमंडल और सुखद कामनाएं लुप्त हो गई, और वह फिर उसी अंधकार में निराशा और विडंबित पड़े हुए थे। उन्हें लक्षणों से विदित होता जाता था कि राय साहब विवाह करने पर तुले हुए हैं, और उनका दुर्बल क्रोध दिनों दिन अदम्य होता जा रहा था। वह राय साहब की इंद्रिय लिप्सा पर, क्षुद्रता पर झल्ला झल्ला कर रह जाते थे। कभी कभी अपने को समझाते कि मेरे बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं, राय साहब अपनी जायदाद के मालिक हैं, उन्हें विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, वह भी हिस्स पृष्ठ हैं, उम्र भी ज़्यादा नहीं, उन्हें ऐसी क्या पड़ी है कि मेरे लिए इतना त्याग करें। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए उनका बुरा चेतूं, उनके कुल के अंत होने की अमंगल कामना करूं, यह मेरी घोर नीचता है। लेकिन विचारों को इस उद्देश्य से हटाने का प्रयत्न एक प्रतिक्रिया का रूप धारण कर लेता था, जो अपने बहाव में धैर्य और संतोष के बांध को तोड़ डालता था। तब उनका हृदय उस शुभ मुहूर्त के लिए विकल हो जाता था जब यह अतुल संपत्ति अपने हाथों में आ जाएगी। तब वह यहाँ मेहमान के अस्थायी रूप से नहीं, स्वामी के स्थायी रूप से निवास करेंगे। वह नित्य किसी कल्पित सुख के भोगने में मग्न रहते थे। प्रायः रात भर जागते रह जाते और आनंद के स्वप्न देखा करते। उन्नत और सुधार के कितने प्रस्ताव उनके मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते। सैर करने में उनको अब कुछ आनंद न मिलता। अधिकतर असह्य अपने ही कमरे में पड़े रहते, यहाँ तक कि आशा और भय की अवस्था उनके लिए असह्य हो गई। इस दुविधा में पड़े जेठ का महीना ही बीत गया और अषाढ़ा पहुंचा। राय साहब की अब की पुत्र शोक के कारण पहाड़ पर जाने में विलंब हो गया था। पाला चीटा पड़ते उन्होंने सफर की तैयारी शुरू कर दी। ज्ञान शंकर से अब जब्त न हो सका। सोचा, कौन जाने नैनीताल में किसी नए विचारों की लेडी से विवाह कर ले, यहाँ कानो कान किसी को खबर भी न हो। अतः उन्होंने शंका कांत करने का निश्चय कर लिया। संध्या हो गई। भगवान को दृढ़ किए हुए राय साहब के कमरे में गए, किंतु देखा तो वहाँ एक और महाशय विद्यमान थे। वह किसी कंपनी का प्रतिनिधि था और राय साहब से उनके हिस्से लेने का अनुरोध कर रहा था, किंतु राय साहब की बातों से ज्ञात होता था कि वह हिस्से लेने को तैयार नहीं। अंत में एजेंट ने पूछा, आखिर आपको इतनी शंका क्यों है? क्या आपका विचार है कि कंपनी की जड़ मजबूत नहीं है? राय साहब, जिस काम में सेठ जगत राम और मिस्टर मंचूर जी शरीक हों, उसके विषय में संदेह नहीं हो सकता। एजेंट, तो क्या आप समझते हैं कि कंपनी का संचालन उत्तम रीति पर न होगा? राय साहब, कदापि। एजेंट, तो फिर आपको उसका साझेदार बनने में क्या आपत्ति है? मैं आपकी सेवा में कम से कम 500 हिस्सों की आशा लेकर आया था। जब आप ऐसे विचारशील सज्जन उद्योग से पृथक रहेंगे तो इस अभागे देश की उन्नति सदैव एक मनोहर स्वप्न ही रहेगी। राय साहब, मैं ऐसी व्यापारिक संस्थाओं को देशोद्धार की कुंजी नहीं समझता। एजेंट आश्चर्य से, क्यों? राय साहब, इसलिए कि सेठ जगत राव और मिस्टर मंचूर जी का विभव देश का विभव नहीं है। आपकी यह कंपनी धनवानों को और भी धनवान बनाएगी, पर जनता को इससे बहुत लाभ पहुंचने की संभावना नहीं। निसंदेह आपका 1000 कुलियों को काम में लगा देंगे, पर यह मजदूर अधिकांश किसान ही होंगे और मैं किसानों को कुली बनाने का कट्टर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे लोभ के वश अपने बाल बच्चों को छोड़कर कंपनी की छावनियों में जाकर रहें और अपना आचरण भ्रष्ट करें। अपने गाँव में एक विशेष स्थिति होती है, उनमें आत्मप्रतिष्ठा का भाव जागृत रहता है। बिरादरी का भय उन्हें कुमार्ग से बचाता है। कंपनी के स्वर्ण में जाकर वह अपने घर के स्वामी नहीं दूसरे के गुलाम हो जाते हैं और बिरादरी के बंधनों से मुक्त होकर नाना प्रकार की बुराइयां करने लगते हैं। कम से कम मैं अपने किसानों को इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता। एजेंट, क्षमा कीजिएगा, आपने एक ही पक्ष पर चित्र खींचा है, कृपा करके दूसरे पक्ष का भी अवलोकन कीजिए। हम कुलियों को जैसे वस्त्र, जैसा भोजन, जैसे घर देते हैं, वैसे गांव में रहकर उन्हें कभी नसीब नहीं हो सकते। हम उनके दवा दारू का, उनके संतानों की शिक्षा का, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने का उचित प्रबंध करते हैं। यहाँ तक कि हम उनके मनोरंजन और व्यायाम की भी व्यवस्था कर देते हैं। वह चाहे तो टेनिस और फुटबॉल खेल सकते हैं, चाहे तो पार्कों में सैर कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन गाने बजाने के लिए समय से कुछ पहले ही छुट्टी दे दी जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पार्कों में रहने के बाद कोई कूली फिर खेती करने की परवाह न करेगा। राज साहब, नहीं, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किसान कूली बनकर कभी अपने भाग्य विधाताओं को धन्यवाद नहीं दे सकता। उसी प्रकार जैसे कोई आदमी व्यापार का स्वतंत्र शुभ भोगने के बाद नौकरी की पराधीनता को पसंद नहीं कर सकता। संभव है कि अपनी दीनता से उसे कूली बने रहने पर मजबूर करें, पर मुझे विश्वास है कि वह इस दासता से मुक्त होने का अवसर पाते ही तुरंत अपने घर की राह लेगा और फिर उसे टूटे फूटे झोपड़े में अपने बाल बच्चों के साथ रहकर संतोष के साथ कालक्षेप करेगा। आपको इसमें कोई संदेह हो तो आप कृषक कुलियों से एकांत में पूछकर अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह बात कहता हूँ कि आप लोग इस विषय में यूरोप वालों का अनुकरण करके हमारी जाति जीवन के सद्गुणों का सर्वनाश कर रहे हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियलिज्म की जो उन्नति हुई है उसके विशेष कारण थे। वहाँ के किसानों की दशा उस समय गुलामों से गई गुजरी थी। वह जमींदारों के बंदी होते थे। इस कठिन कारावास को देखते हुए धनपतियों की कैद गनीमत थी। हमारे किसानों की आर्थिक दशा चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो, पर वह किसी के गुलाम नहीं है। अगर कोई उन पर अत्याचार करे तो वह अदालतों में उससे मुक्त हो सकते हैं। नीति की दृष्टि से किसान और जमींदार दोनों बराबर हैं। एजेंट, मैं श्रीमान से भी बात करने की इच्छा तो नहीं रखता, पर मैं स्वयं छोटा मोटा किसान हूँ और मुझे किसानों की दशा का यथार्थ ज्ञान है। आप यूरोप के किसानों को गुलाम कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की दशा उससे अच्छी नहीं है। नैतिक बंधनों के होते हुए जमींदार कृषकों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते हैं और यदि कृषकों को जीविका का और कोई द्वार हो तो उन आपत्तियों को कभी न झेल सके। राज साहब, यह नैतिक व्यवस्थाएं विद्यमान है तो विदित है कि उनका उपयोग करने के लिए किसानों का केवल उचित शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि जमींदार के हाथों किसानों की बड़ी दुर्दशा होती है। मैं स्वयं इस विषय में सर्वथा निर्दोष नहीं हूँ, बिगाड़ लेता हूँ, हाड़ बांध भी लेता हूँ, बेदखली या इजाफा का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। आसामियों पर अपना रोब जमाने के लिए अधिकारियों को खुशामद भी करता हूँ, साम दाम दंड भेद सभी से काम लेता हूँ। पर इसका कारण क्या है? वही पुरानी प्रथा, किसानों की मूर्खता और नैतिक ज्ञान अज्ञान। शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होते ही जमींदारों के हाथ से यह सब मौके निकल जाएंगे। मनुष्य स्वार्थी जीव है और यह असंभव है कि जब तक उसे झींगा झींगी के मौके मिलते रहेंगे वह उनसे लाभ न उठाए। आपका यह कथन सत्य है कि किसानों को यह विडंबनाएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि उनके लिए जीविका के और सभी द्वार बंद हैं। निश्चय उनके लिए जीवन निर्वाह के अन्य साधनों का अवतरण होना चाहिए, नहीं तो उनका पारस्परिक द्वेष और संघर्ष उन्हें हमेशा जमींदारों का गुलाम बनाए रखेगा। चाहे कानून उनकी कितनी रक्षा और सहायता क्यों न करे, किंतु यह साधन ऐसे होने चाहिए जो उनके विचार आचार को भ्रष्ट न करें, उन्हें घर से निर्वासित करके दुर्व्यसनों के जाल में न फैलाएं, उनके आत्माभिमान का सर्वनाश न करें। और यह उसी दशा में हो सकता है जब घरेलू शिल्प का प्रचार किया जाए और वह अपने गांव में कुल और बिरादरी की तीव्र दृष्टि के सम्मुख अपना अपना काम करते रहें। एजेंट, आपका अभिप्राय कॉटेज इंडस्ट्रीज से है। समाचार पत्रों में कहीं कहीं इनकी चर्चा भी हो रही है, किंतु इसका सबसे बड़ा पक्षपाती भी यह दावा नहीं कर सकता कि इसके द्वारा आप विदेशी वस्तुओं का सफलता के साथ अवरोध कर सकते हैं। राय साहब, इसके लिए हमें विदेशी वस्तुओं पर कर लगाना पड़ेगा। यूरोप वाले दूसरे देशों से कच्चा माल ले जाते हैं, जहाज का किराया देते हैं, उन्हें मजदूरों को कड़ी मजदूरी देनी पड़ती है, उस पर हिस्सेदारी को नफा भी खूब चाहिए। हमारा घरेलू शिल्प इन समस्त बाधाओं से मुक्त रहेगा और कोई कारण नहीं कि उचित संगठन के साथ वह विदेशी व्यापार पर विजयपन न पा सके। वास्तव में हमने कभी इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दिया। पूंजी वाले लोग इस समस्या पर विचार करते हुए डरते हैं। वे जानते हैं कि घरेलू शिल्प हमारे प्रभुत्व का अंत कर देगा, इसलिए वे इसका विरोध करते रहते हैं। ज्ञान शंकर ने इस विवाद में भाग न लिया। राय साहब की युक्तियां अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, पर इस समय उन्हें उनका खंडन करने का अवकाश न था। जब एजेंट साहब ने अपनी दाल गलती न देखी तो विदा हो गए। राय साहब ज्ञान शंकर को देखकर उत्सुक देखकर समझ गए कि वह कुछ कहना चाहते हैं, पर संकोच बस चुप हैं। बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मुझे फुर्सत है। ज्ञान शंकर की जबान न खुल सके। उन्हें अज्ञात हो रहा था कि मैं जो कथन करने आया हूँ वह सर्वथा असंगत है, सच जनता का बिल्कुल विरुद्ध। राज साहब को जितना दुख होगा वह मुझे मन में कितना लोभी और क्षुद्र समझेंगे। बोले, कुछ नहीं, मैं केवल यह पूछने आया कि आप नैनीताल जाने का कब तक विचार करते हैं। राय साहब, आप मुझसे उड़ रहे हैं, आपकी आंखें कह रहे हैं कि आपके मन में कोई और बात है। साहब कहिए, मैं आपसे मैं बिल्कुल सच्चाई चाहता हूँ। ज्ञान शंकर बड़े असमंजस में पड़े, अंत में सकुचाते हुए बोले, यही तो मेरी भी इच्छा है, पर वह बात ऐसी भद्दी है कि आपसे कहते हुए लज्जा आती है। राय साहब, मैं समझ गया, आपके कहने की जरूरत नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन गप्पों को सुनकर शंका हुई वो बिल्कुल निसार है। मैं स्पष्टवादी अवश्य हूँ, पर अपने मुंह देखिए हितैषियों की अवज्ञा करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। पर जैसा आपसे कह चुका हूँ कि वह किंवदंतियाँ सर्वथा आसार है, यह तो आप जानते हैं कि मैं पिंडे पानी का कायल नहीं, और न ही यही समझता हूँ कि मेरी संतान के बिना संसार सुना हो जाए। रहा इंद्रिय सुख भोग, उसके लिए मेरे पास इतने साधन है कि मैं पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाले बिना ही उसका आनंद उठा सकता हूँ। और फिर मैं कभी कामवासना का गुलाम नहीं रहा, नहीं तो इस अवस्था में आप मुझे इतना ही पुष्ट न देखते। मुझे लोग कितना ही विलासी समझे, पर वास्तव में मैंने युवावस्था से ही संयम का पालन किया है। मैं समझता हूँ कि इन बातों से आपकी शंका निवृत्त हो गई होगी, लेकिन बुरा न मानिएगा, उड़ती खबरों को सुनकर इतना व्यस्त हो जाना मेरी दृष्टि में आपका सम्मान नहीं बढ़ाता। मान लीजिए मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया हो तो यह आवश्यक नहीं कि उसे संतान भी हो, और हो भी तो पुत्र ही, और पुत्र भी हो तो जीवित रहे। फिर माया शंकर अभी अभूत बालक है, विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिख दिया है उसे हम क्या आप नहीं जानते। या भी मान लीजिए कि वह वयस्क होकर मेरा उत्तराधिकारी भी हो जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह इतना कर्तव्यपरायण और सच्चरित्र हो जितना आप समझ चाहते हैं। यदि वह समझदार होता और उसके मन में यह शंकाएं पैदा होती तो मैं क्षम्य समझता, लेकिन आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य का एक निर्मूल और कल्पित संभावना के पीछे अपना दाना पानी हराम कर देना बड़े खेद की बात है। इस कथन के पहले भाग से ज्ञान शंकर को संतोष न हुआ था, अंतिम भाग को सुनकर निराशा हो समझ गए कि यह चर्चा इन्हें अच्छी नहीं लगती, और यद्यपि युक्तियों से यह मुझे शांत करना चाहते हैं, पर वास्तव में इन्होंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। इतना ही नहीं, इन्हें यहाँ मेरा रहना अखर रहा है। मुझे यह अपना आश्रित न समझते तो मुझे कदापि इस तरह आड़े हाथों न लेते। उनका गौरवशील हृदय प्रत्युत्तर देने के लिए विकल हो उठा, पर उन्होंने जब तक किया इस कड़वी दवा को पान कर लेना ही उचित समझा। मन में कहा, आप मेरे साथ दुरंगी चाल चल रहे हैं, मैं साबित कर दूंगा कि कम से कम इस व्यवहार से मैं आपको हेठा नहीं हूं। उन्होंने कुछ जवाब न दिया। राय साहब को भी इन बातों के कहने का खेद हुआ। ज्ञान शंकर का मन रखने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। नैनीताल का भी जिक्र आ गया, उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। ज्ञान शंकर राजी हो गए। इसमें दो लाभ थे, एक तो वह राय साहब को नजरबंद कर सकेंगे, दूसरे वह उच्चाधिकारियों पर अपनी योग्यता का सिक्का बिठा सकेंगे। संभव राय साहब की सिफारिश से उन्हें किसी ऊंचे पद पर पहुंचा दे, यात्रा की सारी तैयारियां करने लगे।